20 दिसंबर 1945। प्रश्न है, दोष दृष्टि कैसे दूर हो? उत्तर, यह समझ ले कि दोष दृष्टि करने में अपने लिए बहुत खराबी है। जो दोषी है उसका तो पतन हो ही चुका, किंतु जो उसमें दोष दृष्टि करता है अब उसका पतन बाकी है। जो दोष दृष्टि से हो गया उसका भी हो गया। दोष तो दलदल है, इसमें तो जो जाएगा वो फंसेगा। इसलिए चाहे अपने घर का दलदल हो, चाहे वो गली का दलदल हो, उसमें फंसना ही नहीं चाहिए, नहीं फंस जाओगे। अपने आप को समझाओ कि भाई किसी में कोई दोष है, उसको देखने से तेरे क्या फायदा, क्या फायदा है? किसी के दोष अपने बतावे तो बताने से कौन सा वो दोष निकल जाएगा? वो दोष तो उसको खुद समझ में आएगा तभी निकलेगा। ऐसे दोष नहीं निकलते, बताने से स्वयं और खराब हो जाएंगे। अपने दोष दूर करो, दूसरे की चिंता छोड़ो। दूसरों के दोष दूर करने के लिए भी पहले अपने दोष दूर करो ना। दूसरे के मन में ये भावना रहेगी कि इसमें दोष नहीं है और मेरे में ये दोष हो गया, वो स्वीकार करेगा, निकाल देगा। लेकिन आप तो दोष में पड़े हो, दूसरों को दूर करने के लिए कहते हो तो ये पतन नहीं तो क्या है? हमें तो आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, हमें तो आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि उसके दोष उसके हित के लिए बतावे और सुनने वाला राजी हो जाए कि बड़ा अच्छा हुआ हमारा दोष बता दिया। सेठ जी कहते हैं आज तक मेरे को नहीं मिला। हमारी उल्टी बात है, हमारे तो ये जची हुई है कि हमारा कोई भी दोष बतावे तो सुनकर के अंदर में गुदगुदी हो, खुशी हो। कि जयदयाल देख तेरे में ये दोष है, मैं तो उसका पैर पकड़ लूं, बहुत राजी हूं। प्रशंसा तो दुनिया करती, उससे कोई फायदा नहीं। जयदयाल अच्छा है, जयदयाल गीता पर बोलता है, जयदयाल यूं है यूं है, प्रशंसा में कोई फायदा नहीं। दोष बता, खुश हो जाए, खुश। ऐसे यदि खुश हो जाए तो फिर दोष रह नहीं सकेंगे अंदर। आप खूब सावधानी से चलो इस संसार में, आंख बंद करके मत चलो। ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये आपके भयंकर शत्रु हैं, डाकू हैं, और रात दिन इन डाकुओं को पोसते हो। आप थोड़े विचार तो करो, संतों ने कितना हमको सावधान किया है। कबीरदास जी तो यहां तक कहते हैं कि निंदा करने वाले को कुटी छवाकर अपने पड़ोस में बसाओ कि आ भाई तू मेरे पास रहे, किंतु अपने में तो आदत है कोई निंदा करे तो उसको लाठी से मारने के लिए तैयार हो जाए। कहां संतों का भाव, कहां हमारा ये स्वभाव, कब चित होगी। किसी आदमी ने झूठा दोष लगा दिया और आप लोग चमक गए, दमक गए, राम 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 राम। आप गहरा विचार करो, किसी आदमी ने झूठा दोष लगाया, इससे आपके हानि क्या हुई। हमारे ऊपर कई झूठा दोष लगा देते हैं तो हम तो यही सोचते हैं कि इसमें अपने नुकसान क्या हो रहा है, हमें तो कोई नुकसान मालूम नहीं दिया। कोई कहे कि हमारे पर झूठा दोषारोपण करके हमारी प्रतिष्ठा को खत्म करता है, तो प्रतिष्ठा कौन सी रहने वाली है, कौन सी प्रतिष्ठा, कोई बहुत बड़ी भारी चीज है, कोई भगवत प्राप्ति है, क्या है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ग्लानी नहीं होती प्रतिष्ठा से, ये तो सुअर की विष्ठा के समान है। सुअर विष्ठा खाकर विष्ठा करता है, वो प्रतिष्ठा का रूप है। शास्त्रों में संतों ने बताया है, इसका मतलब आपको शुक्र की विष्ठा नहीं मिली, प्रतिष्ठा नहीं मिली तो शुक्र की विष्ठा नहीं मिली। राम राम राम। तो कोई झूठा दोष लगाए तो कोई हानि नहीं, और यदि कोई हमारी सच्ची निंदा करता है तो वो कितना हमारा हितेशी है, कितना हमारा लाभ पहुंचाने वाला है। सावधान होना था, अरे ये दोष अपने को निकालना है। तो निंदा चाहे झूठी करो चाहे सच्ची करो, आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं है। आप किसके सामने प्रतिष्ठा रखना चाहते हो, आप किसके सामने सच्चा रहना चाहते हो। यदि ईश्वर के सामने सच्चा रहना चाहते हो, वो सर्वांतर्यामी है, सब जगह है, आपको वो जानता है कि आप कैसे हो। यदि दुनिया मुझे बेईमान बतावे, झूठा बतावे, और मैं ईश्वर के सामने सच्चा हूं, तो ईश्वर के सामने इन लोगों का मूल्य क्या है, क्या है इनका मूल्य। और मैं दोषी हूं और लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि यह आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ईश्वर के दरबार में उस सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं है। आप जो हो उसकी कीमत है। हमारी बात को गहराई से सुनो। वासेठ जी, संसार की निंदा स्तुति मेंढक के शब्द के माफिक है, टर टर करता है और फिर चुप हो जाता है। मेंढक टुर टुर करता है, उसे क्या हानि होती है और क्या लाभ होता है। कोई हमारे में दोष आरोप करता है तो हमें उस दोष को निकालना चाहिए। गहराई में जाओ, उसकी बात को गहराई से देखो। हमारा दोष बता रहा है कितना अच्छा आदमी है। अंत में यदि हमारे सच्चाई के साथ भी ढूंढने पर दोष नहीं मिला तो आप कितने निखरे हुए हो। लोग निंदा करते हैं तो लोग बेचारे समय लगाए, अपनी वाणी को दूषित किया, उन पर तो दया करो, उनके ऊपर क्रोध करते हो। हमारे कोई हानि नहीं पहुंचाई, उल्टा उन्होंने आत्मावलोकन किया, हमारा आत्मावलोकन किया, जैसा समझ में आया बिचारों ने कह दिया। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई निंदा करे, यदि आप निंदा करने से डरते हो, यदि आप अपकीर्ति से डरते हो, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी निंदा करे, अपकीर्ति करे, बुरा लगता है, तो सोचो कुत्ता भी यही चाहता है कि मेरा सत्कार करो। ये तो कुत्ता भी चाहता है, आप भी चाहते हो कुत्ता का भी सत्कार करो, पूंछ हिला देता है। मान बड़ाई प्रतिष्ठा अमृत के समान, निंदा तिरस्कार अपमान विष के समान, ये तो सभी प्राणियों को लगती है, सभी मनुष्यों को लगती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का जो मामला है वो तो बिल्कुल इससे उल्टा है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मान बढ़ाई कीर्ति इस किनारे पर है, अपमान तिरस्कार अपकीर्ति इस किनारे पर है, हम ये चाहते हैं कि इस किनारे की चीज इस किनारे रहे, उस किनारे की चीज उस किनारे रहे, ये तो सदा से ही है, इधर मान बढ़ाई है और इधर हमारा तिरस्कार है, वो तो वहीं रहे, वो तो यहीं रहे, ये तो है ही, वो भी इधर है और वो इधर है। हम खूब जोर लगाएंगे तो भी ये वस्तु इधर से उठकर उधर, उधर से उठकर इधर आ जाए, असंभव है। बढ़िया बात है कि मान बढ़ाई ये विष के समान लगे और निंदा स्तुति ये अमृत के समान लगे, मीठा लगे, मान बढ़ाई जहर के समान समझे, तब आप जाकर के समता में स्थित होगे। हमारी कोई स्तुति करता है तो फूल जाते हैं, बड़ी खतरनाक जगह पर खड़े हैं आप। गले में पत्थर बांधकर डूबने जैसा है, क्यों? क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ये बड़ा भारी बोझ है, जैसे पत्थर डाल करके बांध दे तो रसातल में जाएगा, ऐसे इतना बड़ा भार मान बढ़ाई आदर सत्कार रसातल में जाओगे। हल्के हल्के तिर गए डूबेगा सिर भार, तिनका है पत्ता है पानी भर, यूं हिलते हिलते तर जाते हैं और पत्थर होगा वो डूब जाता है। निरहंकारिता विनयशीलता ये बहुत हल्कापन है। मान बढ़ाई ये पत्थर है जो मनुष्य सबके चरणों की धूली होकर रहता है, वह सबका सिरदार हो जाता है, और जो सबका सरदार बनकर रहता है वो सबके चरणों की धूलि में पड़ा रहता है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, मैं तो तीन ही बात जानता हूं, नाम में रुचि, नामे नामनी रुचि, जीवे दया। अपने उन तीनों को छह बना लिया, भजन और ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय, दुखियों की सेवा तथा इंद्रियों का संयमन, ब्रह्मचर्य रखो। ये आपको बहुत बड़ी शक्ति देने वाला है, बहुत दामी चीज है। संयम, सेवा, साधन, सत्पुरुषों का संग, इन चारों के साथ से मोह होए भंग। संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, इन चारों के साय से होवे मोह का भंग। अज्ञान का नाश हो जाता है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम रोको, संयम करो, विषयों से रुको, सावधान हो। ये बहुत बड़ी साधना है। साधना माने जप, तप, ध्यान, संयम सब मिलकर के साधना होते हैं। इसमें चार पांच गकार सहायक होते हैं, गौ, गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद। इनको पकड़े रखो। ये संसार से पार करने के लिए, डूबने से बचाने के लिए आधार है, इनको पकड़ लो। गौ है, गीता है, गंगा है, गायत्री है, गोविंद का नाम है, पूर्ण हो जाओगे। दस चीज के सेवन से आत्मा का कल्याण होता है। धृति, क्षमा, दमस्ते, यम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, यम, नियम इत्यादि। इनसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या थोड़ी सी मान बढ़ाई, ये गंदे भोग इनके अंदर आप पड़ गए। हमारे शास्त्र कहते हैं नवधा भक्ति है, को जो पसंद आए उससे कल्याण करो। नौ नहीं होते के तो आठ तो करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, आठ नहीं होते तो सात तो करो। सात नहीं तो छह, ब्राह्मण के लिए षटकर्म, क्षत्रियों के लिए शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्षम, और छह नहीं तो वेश्यों वाला काम करो, नहीं तो शूद्रों वाला एक काम, सेवा करो, मन को वश में रखो। इंद्रियों का संयमन, जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, ये करो। और कोई एक ही साधन करो तो केवल ध्यान, केवल प्रेम, केवल ज्ञान, केवल स्वरूप का बोध। ग्यारह पदार्थ ऐसे हैं कि उनका आप सेवन करो तो आपका ही नहीं, आप चाहो तो सारे संसार का उद्धार कर सकते हो। परमात्मा में प्रेम, परमात्मा में श्रद्धा, जप और ध्यान, उपरति और वैराग्य, गुण और प्रभाव, भगवान की महिमा, लीला और धाम। इधर रुचि नहीं होती, बड़ा आश्चर्य होता है। इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जरा झांक के देखो, मानव शरीर जब चला जाएगा इसका परिणाम क्या होगा। समता, शांति, आनंद, ये परमात्मा की तरफ मिलेंगे, संसार में नहीं मिलेंगे। नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव महिमा श्रद्धा प्रेम उपरति वैराग्य, अच्छी अच्छी चीजें अपनाओ। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भोग इन्हीं इन्हीं के पीछे दौड़ते रहोगे, आज तक दौड़े क्या फायदा हुआ। और जिन संतों ने भगवान का नाम लिया, लीलाओं में मस्त रहे, श्रद्धा की प्रेम की, उनके पास क्या कमी रही। संसार को अत्यंत भुला देना ये उपरति है, संसार से प्रेम हटाना ये वैराग्य है। अभी हमने आपको जो ये नाम लीला रूप वगैरह बताए, ये उच्च कोटि की चीजें हैं। शास्त्रों में एक से एक बढ़कर बातें कही है, आपकी जो इच्छा हो वो आप चुन लो, सभी मुक्ति देने वाले हैं। ये ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ। ये इंद्रियों का संयम है, ये यज्ञ है। भगवान कहते हैं सारे ही साधन परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। महर्षि पतंजलि ने अनेक साधन बताए, कोई भी एक उपाय कर लो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सारे साधन दो निष्ठाओं के अंतर्गत आते हैं, सांख्य योग, सांख्य और योग, भक्ति और ज्ञान। ज्ञान और भक्ति के भी कई भेद हैं। भक्ति मार्ग में मुख्य शरणागति और ज्ञान के मार्ग में अजातवाद। अजातवाद माने दूसरा कोई है ही नहीं, वही वो है, वही वो है। हमें दोनों मार्ग अच्छे लगते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। शरणागत हो जाओ भगवान के, और या फिर अजातवाद हो जाओ। वर्तमान में कलयुग का वातावरण बड़ा तेजी से चल रहा है, इसलिए अजातवाद की अपेक्षा लोग भक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये भक्ति के अधिकारी ज्यादा है, इसलिए भक्ति की चर्चा ही सब तरफ होती है। ज्ञान की चर्चा पुस्तकों में देखी हुई रहती है। जिन्हें अनुभव है हम उनको प्रणाम करते हैं। शरणागति को के प्रमाण है, शरणागति से तो सारा शास्त्र भरिया पड़ा है। गीता ही बोले नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। वेदों का प्रमाण है। धर्मराज नचिकेता के प्रति कहते हैं, ओम एक अक्षर है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, मछली जैसे जल के रहती है ऐसी शरणापन्न भक्ति चाहिए, पपैया स्वाति बूंद को छोड़कर पानी छूता ही नहीं, इस तरह एक भगवान के परायण हूं, पतिव्रता स्त्री जैसे पति के परायण रहती है। ये तो जानते हो आप शरणागति क्या है, इस तरह परमात्मा के परायण रहने का नाम शरणागति। बलि भगवान के शरण हो गयो, अहमता ममता सब कुछ भगवान के समर्पण कर देनी। बलि के सिर के ऊपर भगवान चरण रख दियो, इसमें अलग के शरणागति है। त्रिलोकी में घूम आयो जयंत, कहीं जगह नहीं मिली, आखिर भगवान के शरण आया तब शांति मिली। रामायण में विभीषण भगवान के शरण आया, किस तरिया भगवान भी न आते ही लंकेश बना दियो। अर्जुन भगवान के शरण हुयो तो अर्जुन ही कहने लाग गयो, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। शरणापन्न की मैं तो एक अलग ही बात कहवा, कठपुतली है जो रेड़ो भगवान की कठपुतली। वह जिस तरह सब कुछ समर्पण किए हुए सूत्रधार के अधीन होती है, इसी तरह भगवान के शरण होनो चाहे। थे थारी अकल लगाओ, भगवान की अकल में थारी अकल लगाओ, जड़ा थारे शरणागति में बाधा पड़े। भरत जी महाराज में प्रेम तो था ही, वे सारे गुणों के शिरोमणि थे। नवदा भक्ति भरत जी के रोम रोम में रमी हुई थी। जितने गुण संसार में आपको दिखते हैं उतने का सेवन करो, जितना आपको अवगुण दिखता है उसका त्याग करते चले जाओ। भगवान की भक्ति का प्रेम जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो सारे गुण आप ही आकर इकट्ठे हो जाते हैं। निवाण में जल आवे, इसी प्रकार जिसमें भक्ति होवे वो निवाण है, उनमें सरलता हुए सारा गुण आ जावे, सारे सद्गुणों को खजानों बन जावे, भगवान के सारे गुण आकर प्राप्त हो जावे, वो भगवान को अनुयायी है। भक्ति करने से सारे गुण आप ही आ जाते हैं। भगवान को आप मन से, बुद्धि से, वाणी से, इंद्रियों से पकड़े रखो। इंद्रियों से भगवान ही भगवान दिखे, बुद्धि से भगवान का ही निश्चय हो, मन में भगवान की बातें पैदा हो। भगवान को बुद्धि से पकड़ लो के है, ये भगवान है एक निश्चित करो, निश्चय कि भगवान ही है और मैं जो कुछ करे वो बहुत बढ़िया करे, खुश रहो। उना को ध्यान करनो, मन से पकड़नो है। नाम का जप कीर्तन करना ये वाणी से पकड़नो है। काना सु भगवान की महिमा सुननी हो, कान सु कान ने भगवान ने लगानो है। अंदर ही अंदर पुकार करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ बचाओ। शरीर से भगवान की सेवा करना, पूजा करना, आज्ञा का पालन करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये शरीर से भगवान को पकड़ना है। इस प्रकार से भगवान की सब प्रकार से शरण हो जाना चाहे। मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वेशेषि सत्यंते प्रतिदाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मल्मासुते। मुझमें मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। इसको भगवान ने अपने आप को खोल दिया, कितनी कृपा की है भगवान ने। सारे कर्म मेरे अर्पण कर दो। भगवान यदि गीता में ये बात नहीं कहते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ी कृपा की भगवान ने अपने को थोड़ा खोल दिया। कोई भला आदमी ऐसी बात कहता नहीं है। सार बात तो बोली भरी पड़ी है। विनय भाव की वृद्धि के लिए अपने से जो बड़े हैं उनको हृदय से नमस्कार करो। क्यों? इससे अपना अहंकार और अभिमान का नाश होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। सकाम भाव की दृष्टि से भी थे विचार करो तो आयु बढ़ती है, वृद्धि होती है, बल बढ़ता है, कीर्ति होती है और समय बहुत कम लगता है। बड़ों को प्रणाम करो, मां है, बाप है, दादा है, दादी है, बड़े भाई है, भौजाई है, प्रणाम करो। पैसे भी खर्च नहीं होते, परिश्रम भी नहीं होता, लाभ बड़ा भारी होता है। एक सार चीज है मनुष्यों के लिए, प्रणाम करने से बहुत फायदा है, उसको हम कह नहीं सकते हैं। एक दूसरी बात है, इसमें कुछ परिश्रम है, सबको नारायण समझकर सबकी सेवा करना परिश्रम तो है, किंतु सबको नारायण समझ लेना और नारायण समझ के सेवा करना, ऐसे भाव में परिश्रम दिखता है पर परिश्रम अंदर होता नहीं है। एक भाई ने पूछा कि भगवान के दर्शन किस तरह जल्दी जल्दी हो सके। मैंने उसको कहा, आतुर जो दुखी आदमी है, आतुर है दुखी है, उसको नारायण समझ के सेवा करने से भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं। जल्दी प्रकट होने के दो स्थान हैं, एक तो महात्मा और एक आतुर, बहुत कष्ट पा रहा है। महात्मा तो मिलते नहीं, और कोई महात्मा ऊपर से दिख गया तो पहचानने में भी नहीं आते, इसलिए हम कह तो सकते नहीं है कि वो महात्मा है, किसकी सेवा करो। आतुर है वो तो सब जगह मिल जाएंगे, आपके घर में ही मिल जाएंगे, बीमार आतुर वृद्ध घर में मिल जाएंगे, उनकी सेवा, उनको नारायण समझ करके उनकी सेवा करो, भगवान का भाव करके सेवा की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। भगवान रुक नहीं सकते हैं, फिर आपका होगा कि है तो कठिन, तो मैं कहवांगा कठिन के है, कोई पहाड़ उठानो है के, पहाड़ उठावे तो कह सको कठिन है, इमें के कठिन बात आई था ना, कठे कठिनता लागी, कोई कठिनता नहीं है, तुम्हारी मूर्खता से कठिन बात दिखती है। अब मूर्खता भरी पड़ी है फिर कोई कठिनता लगे तो उसका कौन क्या करे। नामदेव जी की बात देखो, कुत्तो रोटी लेकर भाग्यो तो भी घी की घिलोड़ी लेकर भागे कि एक कुत्ता महाराज, एक कुत्ता भगवान, लूखी रोटी क्यों ले जाओ, चौपड़ दूं थानी रोटी चौपड़। गैल गैल दौड़न ला गया कुत्ते में भगवान प्रकट हो गया। भगवान ने भी बड़ी शर्म आवे, ध्यान की बात, बहुत बढ़िया बात कि ओ तो मैंने कुत्ता में भगवान देख लियो, अब मैं प्रकट नहीं होऊंगो तो कितनी हल्की लगेगी। तो भगवान तो प्रकट होने के लिए विवश है, ते प्रकट करो तो सही। नामदेव जी के छपरा में आग लाग गई, जो भी बैठे चीज ही वह सारी आग में जल गई, थोड़ी बहुत बची तो भी क्या, लो भगवान अल्लाह अभी आपके अर्पण। तो भगवान भी आग में ही प्रकट हो गया। अब बताओ, आग ने भगवान समझ लियो, अब भगवान रुक सके है के? भगवान कहीं रुके, एकनाथ जी महाराज विश्वनाथ भगवान के जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से चालिया। जब रास्ता में रस्तो तय हो गयो तो रास्ते में देखे कि एक गधो प्यासो तड़प रही है, बिन देख करके नामदेव जी रे भाव उमड़ियों, कह रहे तो भगवान है, भगवान है भगवान। तो भगवान समुद्र बिन जल पिलावण लाग्या, विश्वनाथ भगवान बिन गदारमाय ने प्रकट हो गया। उन्होंने अपना कावड़ का जल गधे को पिला दिया। शंकर भगवान ने लाज नहीं आई कि मैं गदामुख क्या प्रकट हुआ, हो गया प्रकट। भगवान ने लाज नहीं आई मैं कुत्ता मुंह क्या प्रकट हुआ। रंति देवा 48 दिन तक बेचारा भूखा रिया। 49वें दिन में कुछ हलवा पूड़ी कुछ जल मिलियो, तो सबसे पहले पूजा पाठ करी, फिर भोग लगायो। इतने में एक ब्राह्मण आयो, उन्होंने भोजन करा दियो। इतने में शूद्र आयो, बिने भी भोजन करायो। फिर एक बहुत कुत्सित रूप आलो, खराब रूप आलो चंडाल आयो, बिने भोजन करायो। जो कुछ था सब खाली हो गयो, और उस चंडाल ने सब कुछ खा लिया, कुछ चीज नहीं बचाई। अब एक केवल जल मात्र बचो। राजा भी जल ने स्वीकार करता। इतने में एक चंडाल फिर आ गयो, कहने लगा महाराज मैं प्यास हूं। राजा ने कहा ले जल ले पिला दियो। भी चंडाल के मायने भगवान प्रकट हो गया। इस तरह भगवान परीक्षा लेने के लिए आवे तो जो भी आतुर व्यक्ति दिखे करे भगवान है, यारी सेवा भगवान तक पहुंची। इसलिए सबने नमस्कार करनो, दुखी आदमी की सेवा करनी, आतुर की सेवा करनी, शास्त्र को सिद्धांत है। थे गीता देखो, रामायण देखो, भागवत देखो, सबको यही सिद्धांत है। सब में भगवत बुद्धि करनी चाहे, सब उपदेशों को सार है। महाराज